नमस्कार भारत, आज है 25 जुलाई दिन बुधवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। पाकिस्तान की नई संसद के लिए आज होंगे आम चुनाव, क्या सोच रहा है युवा मतदाता?
सबसे बड़ा मसला इलिटरेसी है, तालीम की बहुत जरूरत है हम सबको, एक माइंडसेट को भी हमने टैकल करना है।
जो आप वादे कर रहे हैं वो सोच समझ के करें।
मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में हिंसक प्रदर्शनों के बाद आज मुंबई बंद का आह्वान। राजस्थान के गृह मंत्री ने कहा, रकबर खान की मौत पुलिस हिरासत में हुई, न्यायिक जांच होगी। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने घटना के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया।
जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी ये मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी, ये सब आई वॉश है या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं लोग।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। पाकिस्तान में आज 10 करोड़ से अधिक मतदाता केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। चुनाव अभियान हिंसा से प्रभावित रहा है और सेना पर चुनावों में दखल देने के आरोप लगे हैं। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार युद्ध से प्रभावित हो रहे किसानों की मदद के लिए अमरीकी सरकार ने 12 अरब डॉलर का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसान सीधे कैश ले सकेंगे या अपनी अतिरिक्त फसल को सरकार को बेच सकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैक्स बढ़ाया है और चीन से आने वाले अरबों डॉलर के सामान पर भी अतिरिक्त कर लगाए हैं। इसके जवाब में कई कार्रवाइयों से अमरीकी सोया और मांस निर्यात पर असर हुआ है। अमरीका के कृषि मंत्री सोनी परड्यू ने कहा है कि अमरीकी किसानों को मजबूर करके अमरीका को झुकाया नहीं जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनकी नीतियों के नतीजे दिखने लगे हैं। ट्रंप ने कहा, हम जबरदस्त प्रगति कर रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उन पर लगाए गए और अधिक कर लगाए जाएं, वो सभी हमारे पास आएंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। आप देखते रहिए, हम बाजार खोल रहे हैं, आप देखिए कि आगे क्या होता है, बस थोड़ा सब्र कीजिए। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ग्रीस में राजधानी एथेंस के पास कई कस्बों और गांवों को तबाह कर देने वाली जंगल की आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बचाव कर्मियों के मुताबिक आग ने बड़े पैमाने पर तबाही की है और कई घर, गाड़ियां और जंगल पूरी तरह जल गए हैं। अभी तक 74 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन आग के बाद से लापता लोगों का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। आग से सबसे ज्यादा प्रभावित तटीय शहर माती में एक चट्टान से 26 शव बरामद किए गए हैं। प्रशासन को शक है कि कई जगह आग जानबूझकर लगाई गई है। अमेरिका के सबसे चर्चित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक कैलिफोर्निया के योसेमाइट पार्क की ओर बीते 10 दिनों से बढ़ रही जंगल की आग की वजह से बुधवार को पार्क स्थित सभी होटलों और कैंप स्थलों को बंद रखा जाएगा। पर्यटकों से इलाका खाली करने के लिए कह दिया गया है। इस आग ने 12,000 हेक्टेयर जंगल जला दिया है। 3,000 से अधिक अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत इस आग की वजह से हुई है। मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत ने इसराइल और सीरिया के बीच बढ़ रही हिंसक झड़पों के खतरे के प्रति आगाह किया है। इजरायली कब्जे वाली गोलान हाइट्स क्षेत्र में एक सीरियाई विमान को मार गिराए जाने से इसराइल और सीरिया के बीच तनाव बढ़ गया है। सीरिया का कहना है कि विमान उसके हवाई क्षेत्र में था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना ने विमान को मार गिराकर ठीक किया है। तुर्की में बीते सप्ताह 2 साल बाद आपातकाल हटाए जाने के बाद संसद ने सरकार की ओर से लाए जा रहे नए सुरक्षा कानूनों को मंजूरी दे दी है। चरमपंथ विरोधी कानून के तहत लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे और संदिग्धों को 12 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकेगा। तुर्की में प्रशासन के पास चरमपंथी संगठनों से संबंध रखने वाले अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार भी बरकरार रहेगा। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक के जरिए भी सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। हिंसा और धांधली की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान के लगभग 10 करोड़ 60 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे तय होगा पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच माना जा रहा है। इन दोनों के अलावा तीसरा चेहरा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो जरदारी का भी है। इस चुनाव के जरिए पाकिस्तान में हजारों नौजवानों को आज पहली बार वोट डालने का मौका मिलेगा। बीबीसी ने ऐसे तीन नौजवानों से बात की और उनके सामने तीन सवाल रखे।
पाकिस्तान के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं?
आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही है कि जो बेसिकली हमारे इदारे तबाह हो चुके हैं, तो उसको रिबिल्ड करना, दैट विल बी द बिगेस्ट इशू।
सबसे बड़ा मसला इलिटरेसी है। तालीम की बहुत ज़रूरत है हम सबको, एक माइंडसेट को भी हमने टैकल करना है और जो उस तालीम को अफोर्डेबल बनाना है हर एक के लिए।
मेरे ख्याल में नेशनल नैरेटिव सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। द कंट्री इज नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन।
पाकिस्तानी नेताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
मैं तो यही कहूँगा कि जो आप वादे कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, अगर आप उनको निभा सकते हैं तो वो वादे करें।
मैं यही कहूँगी कि सब कैंडिडेट से कि फेयर मीन से पार्ट लें इन इलेक्शंस में, कोई करप्शन वगैरह करने की मतलब अब नहीं।
ऑनेस्टी होनी चाहिए। जो बंदा कैंडिडेट अपने आप को समझ रहे प्राइम मिनिस्टर का, तो एटलीस्ट वो ऑनेस्ट हो अपने साथ।
भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर आप क्या सोचते हैं?
थिंक अभी तो काफ़ी फ्रिक्शन है और काफ़ी मतलब मसाइल हैं दोनों मुल्कों के आपस में, लेकिन कोई ऐसा वजह नहीं है जो जिसकी वजह से वो नहीं हल हो सकते।
मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है ये बहुत पुराना हो गया है, तो अब टाइम आ गया है कि ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो एटलीस्ट पीसफुल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, फ्रेंडशिप थोड़ी सी डेवलप हो जानी चाहिए अब दोनों मुल्कों।
ये थी पाकिस्तान से नौजवानों की आवाज़ें, वो नौजवान जो इस बार पहली बार वोट देंगे। पाकिस्तान में पिछला आम चुनाव साल 2013 में हुआ था। पूरे 5 साल के बाद हो रहे इस चुनाव के लिए पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव भी किए हैं। बीबीसी उर्दू सेवा के सहयोगी रियाज सोहेल ने कराची में कुछ आम लोगों से बात की जो बता रहे हैं कि इस बार क्या कुछ नया होगा पाकिस्तान के चुनावों में।
2013 के इलेक्शन से इस दफ़ा काफ़ी चेंजेस किए इन्होंने, और इस दफ़ा इन्होंने एक नया वोटिंग के बाद जो है जो गिनती का अमल होता है उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन भी मुतारिफ कराई है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके मोबाइल में वो ऐप होगी, और जैसे ही पोलिंग का अमल ख़त्म होगा और काउंटिंग का अमल ख़त्म होगा तो फौरन ही उस ऐप के ज़रिए जो भी नतज होंगे वो हमें वहाँ पर हम सबमिट कर देंगे उनको।
कैमरे के बारे में ये बताया गया कि कैमरे लगाए जाएंगे और कोई धांधली नहीं होगी और सारा जो है ना पुरसकून होगा, और एजेंट से भी आप पहले बातचीत कर सकते थे, अब वो भी नहीं है। आप फ़ोन पे भी मतलब कोई ऐसी मतलब डिस्कस ना करें कि आपको ये जाहिर किया जाए कि आप शायद किसी पार्टी के साथ हैं।
पहले यानी कि 2013 के इलेक्शन में जो है इन तमाम यानी कि जो है स्टाफ का जो है ड्यूटी जो है उसी एरिया में ही यानी कि लगाई गई थी, और इस दफ़ा यानी कि जो है अलग अलग दूर दूर लगाई गई ताकि यानी कि जो है जानबदाराना तरीके से यानी कि ना हो सके और गैर जानबदाराना और शिफाफ तरीके से इलेक्शन हो सके।
पाकिस्तान के शहर कराची से आम लोगों की आवाज़ें सुन रहे थे आप, और आइए अब चलते हैं सीधे पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। शुमाइला, सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि कितना वक्त है अभी वोटिंग शुरू होने में?
वोटिंग जो है वो पाकिस्तान का टाइम सुबह 8 बजे और इंडिया का टाइम सुबह 8:30 बजे, तो तकरीबन 2 घंटे हैं अभी यहाँ पे पोलिंग शुरू होने में।
शुमाइला, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो कौन से एक दो बड़े मुद्दे रहे जो पूरे डिबेट में पाकिस्तान में छाए रहे?
देखिए, सबसे बड़े जो दो मुद्दे थे वो दो बड़ी पार्टियों ने पेश किए, जो एक सिविलियन सुप्रीमेसी का मुद्दा था जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने लोगों के सामने रखा, जबकि फॉर्मर क्रिकेटर इमरान खान जो उनके अपोनेंट हैं और एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं वो स्टेटस को तोड़ने की बात करते रहे और एक करप्शन फ्री नया पाकिस्तान बनाने की चर्चा करते रहे।
शुमाइला, 272 सीटों पर वोट डाले जाएंगे आज, कुछ अंदाजे से बता पाएंगी कितनी महिला उम्मीदवार हैं इस बार के चुनावों में?
इस बार पूरे पाकिस्तान से प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की अगर सब सीटें मिला लें तो ये सीटें ज्यादा हैं। इसके ऊपर 171 महिलाएं इस दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। इससे पहले पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं ने कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, जनरल इलेक्शन।
एक बात और बताइए शुमाइला की, पाकिस्तान में आज से पहले यदि मेरी जानकारी सही है तो 10 बार संसदीय चुनाव हो चुके हैं, आम चुनाव हो चुके हैं जिससे प्रधानमंत्री चुना जाता है, उन तमाम चुनावों और इस बार के चुनाव में कोई फर्क, बड़ा फर्क नजर आता है आपको?
अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, इस दफा जिस तरह से कैंपेन की गई है लोग बहुत अकाउंटेबल करते रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। जब लोग वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए हैं दोबारा वोट मांगने के लिए, तो बहुत उनको क्रिटिसिज्म का और बहुत ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ा है। इस दफा अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, टेलीविजन को बहुत इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया को बहुत इस्तेमाल किया गया है, तो इस दफा ये लगता है कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा इनलाइटन हैं और ज्यादा अवेयर हैं और उनको पता है वोट की ताकत क्या है और उनको ये कुछ पहले की नस्बत ज्यादा समझ है कि वो इलेक्ट जिनको करने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा कल को उनकी जिंदगियों पर भी और मुल्क के ऊपर भी।
शुमाइला, पश्चिमी मीडिया और यहाँ भारत के अखबारों में भी ये पढ़ते आए हैं हम पिछले कुछ दिनों से कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन को वहाँ लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए परीक्षा, इम्तिहान बताया जा रहा है। पाकिस्तान का अपना मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है?
पाकिस्तान में हमेशा एक अनसर्टेनिटी सी होती है कि इलेक्शन होंगे, हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तकरीबन 19 साल हो गए हैं जब आखिरी बार किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने एक सिविलियन हुकूमत को घर भेज दिया था और खुद से सरकार पे कब्जा किया था। लेकिन पाकिस्तान में हालात चुके ऐसे हैं, यहाँ पे मिलिट्री बहुत उसका इन्फ्लुएंस है, बहुत पावरफुल है, तो हमेशा ये बातें होती रहती हैं कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो शायद इन सब हालात से एडजस्ट कर चुके हैं। जो एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो जिस भी शक्ल में है वो चल रहा है। इलेक्शन जो है वो अपने जिस टाइम पे कहा गया था, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम था, उसके ऊपर हो रहा है। तो वो उस तरह की बेयकीनी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इसके सवाल जरूर उठाए जाते रहे हैं कि क्या पसे पर्दा कोई मिलिट्री अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही है किसी एक पार्टी को ऊपर लाने के लिए और किसी एक पार्टी को नीचे या पीछे रखने के लिए।
ये थी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी, जो बता रही थी पाकिस्तान में आज जो आम चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर वहाँ की मीडिया और वहाँ के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्कार, भारत में अब रुख कर रहे हैं भारत के राज्य महाराष्ट्र का, जहां मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कल कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन होने के बाद आज मुंबई में बंद का आह्वान किया गया है। आइए सीधे चलते हैं मुंबई, जहां से स्थानीय पत्रकार प्रशांत नानावरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो ये बताएं कि बंद के आह्वान के मद्देनज़र आज मुंबई में क्या तस्वीर बनती नज़र आ रही है आपको, उस मुंबई के जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं, कभी थमती नहीं?
बिल्कुल, आज मुंबई में बंद का ऐलान किया गया है। मुंबई के साथ ही मुंबई के जो आजू बाजू के इलाके हैं, थाने, नवी मुंबई या फिर रायगढ़ हो, पालघर हो, इस जिले में भी बंद का ऐलान किया गया है। और कल ही कहा गया था मुंबई के जो समन्वयक है वीरेंद्र पवार जी ने कि जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं वो बिल्कुल बंद नहीं होंगी और जो एसएससी एचएससी स्टूडेंट की जो रिपीट एग्जाम है इसके लिए स्कूल कॉलेज को भी हम इस बंद में शामिल नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे सामने में मुंबई के कांदिवली इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पे मुझे स्कूल बसेस चल रही है वो नजर आ रहा है या फिर जो यातायात है वो दिखाई दे रही है। तो बंद का असर ना पड़े ज्यादा से ज्यादा जो सेवाएं है, अत्यावश्यक सेवाएं है, इसके लिए
प्रशांत ये बताइए कि कल मुंबई के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की वारदातें देखी हैं, तो आज मुंबई में इस तरह की हिंसा ना हो, वैसी स्थिति निर्मित ना हो जैसी कल देखने को मिली, इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ चौकसी बढ़ाई गई है, ज़्यादा पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्या इस बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे आप?
बिल्कुल, मुंबई में जो पुलिस दल है वो ज़्यादा तैनात की गई है। जो आयुक्त है सुबोध कुमार जी, उन्होंने भी कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स हो या जंगल विरोधी पथक हो या फिर SRPF हो, उनको इन जवानों को तैनात किया गया है मुंबई के अलग अलग जो संवेदनशील एरिया जो है माने जाते हैं वहाँ पे। साइबर पुलिस ने भी कहा है कि सोशल मीडिया से जो अफवाहें उठती है उस पर जनता गौर करे, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास ना रखे। और उन्होंने कहा है कि जो भी अफवाह अगर उठती है तो उसको प्लीज कंफर्म कर ले पुलिस के साथ। उसके साथ ही रेलवे पुलिस को भी तैयार रहने को कहा है। आज उनको 12 घंटे की ड्यूटी दी गई है। सुबह 7 बजे से उनको कहा है कि आप अपने ऑफिस में आके तैयार रहिए। और रेलवे सुरक्षा बल है।
प्रशांत, एक बात और बताते चलें, चलते चलते पिछले दिनों मुंबई में बहुत बारिश हुई है, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं किस तरह का मौसम है मुंबई में?
मुंबई में फिलहाल तो बिल्कुल साफ मौसम है, बारिश कोई आकांक्षा नहीं दिख रही है। बट यस, हवामान विभाग ने कहा था कि अगले 48 घंटों में बारिश होगी, तो अगर बारिश होगी तो वैसे भी मुंबई से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, तो शायद अगर बारिश हो गई तो अच्छा माहौल रहेगा, लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। बट फिलहाल तो लोग अपने काम कर रहे हैं, बिल्कुल साफ मौसम है यहाँ पे।
ये थे मुंबई से प्रशांत नानावरे और चर्चा हम कर रहे थे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर। महाराष्ट्र में हिंसक प्रदर्शनों के बाद आज मुंबई बंद का आह्वान किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र से बात राजस्थान की। राजस्थान के अलवर में बीते दिनों कथित गौरक्षकों के हाथों रकबर खान की पिटाई और फिर उनकी मौत के मामले में राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि रकबर की मौत पुलिस हिरासत में हुई और इसकी न्यायिक जांच होगी। सुनिए गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा है।
तो सारी घटना की जांच के बाद ये बात लगभग प्रूव है कि थाने पर लेकर आ गए और उन्होंने गायों को डिस्पोज करने का, गौशाला पहुंचाने का काम जो है रस्ते में, जैसा उसने कहा कि भाई इनको चाय भी पिलाई, वहां बातचीत की और वहां ला के छोड़ के गए, और पहले गायों को गौशाला में जमा कराने के लिए चले गए जो उन्हें नहीं करना था। सबसे पहला काम था उनका, थाने ले जाने के पहले भी हॉस्पिटल आ रहा था, उस हॉस्पिटल में ले जा कर के उस आदमी के बारे में जो भी इलाज होता, जो भी डॉक्टर से होता वो करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। और इसके कारण से हमारी जो टीम आई है DJ के साथ, उन्होंने भी इसमें इस पुलिस की इस गलती के कारण से हमने उसको सस्पेंड किया। उसके जो साथी 4 और थे उनको हमने लाइन हाजिर किया, जाँच अभी हमारी चल रही है। दूसरा क्या है कि इस केस में चूँकि जो एविडेंस हमने इकट्ठी की है उससे लगता है कि उसकी डेथ कस्टोडियल डेथ के रूप में हुई, क्योंकि वो हमारे पास ही था, क्योंकि वहाँ से 300 मीटर दूरी पर जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, 300 मीटर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और इस कारण से ये जुडिशियल इंक्वायरी अपने आप बन गई।
ये थे राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया। कार्यक्रम में आगे दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे ये खबर और तमाम दूसरी खबरें किन सुर्खियों की शक्ल में छपी है। उससे पहले एक और खबर पे, साक्षात्कार पे हम आपसे बात कर लें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कल BBC के स्टूडियो में आए थे, जो इस तरह की घटनाओं के लिए, जो मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को दोषी मानते हैं। लेकिन क्यों ऐसा उनको क्यों लगता है कि वो इसके लिए BJP और उसकी विचारधारा को दोषी मानते हैं? यही सवाल BBC संवाददाता कुलदीप मिश्र ने उनसे कहा, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए आप।
उसकी वजह डेटा है। डेटा यह है कि जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं 86% मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए हैं और उसमें से 96% मुसलमान हैं। दूसरी बात कि राजनाथ सिंह का कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि 84 यकीनन एक दर्दनाक वाकया है कि सिखों का जेनोसाइड हुआ, नस्ल कशी हुई, मगर क्या बाबरी मस्जिद की शहादत वो मॉब की लिंचिंग नहीं थी? क्या गुजरात के 2002 के राइट्स मॉब लिंचिंग नहीं थे? क्या बम्बई के सड़कों पर उस जमाने में 93 जनवरी में जो खून की होली खेली गई? और फिर इस बात इकरार नहीं करना, मानना नहीं कि मॉब लिंचिंग नहीं होती, सिर्फ 84 2004 में हुई। मॉब लिंचिंग हो रही है और मॉब लिंचिंग करने वालों को आपकी सरकार, आपके मिनिस्टर, आपके लीडर्स, आपके आरएसएस के आइडियोलॉजी के लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी ये मॉब लिंचिंग नहीं खत्म होगी। ये सब आई वॉश है या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं लोग।
संघ के एक प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार, उनका ये बयान आया कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक जाएंगी अगर गोमांस खाना लोग छोड़ दें। हो सकता है इसमें संवैधानिक पेचीदगियां हैं कि भाई हम क्यों छोड़ दें, हमारा हम अपने पसंद का खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है कि मुसलमान को अपनी जान बचाने के लिए गोमांस खाना छोड़ना पड़े तो क्यों नहीं छोड़ देते?
देखिए, सबसे पहली बात तो झूठ कह रहे हैं। रखबर खान ने गाय को खरीद कर लेकर जा रहा था दूध बेचने के लिए, काट कर खाने के लिए नहीं। पीलू खान भी गाय का कारोबार करते थे, उससे दूध बेचते थे। और तीसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार है, गोवा में है, आप वहां पर बैन लगाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? फिर वहां पर मॉब लिंचिंग क्यों नहीं हो रही है, वहां पर, यहां पर क्यों की जा रही है? और चौथी बात, अगर मान भी लिया जाए कि उनकी बात में, उनकी झूठ में कि सच्चाई है, आपको किसने अख्तियार दिया किसी की जान लेने का? और आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को? आपकी ताईद, आपका इनकरेजमेंट की वजह से उनकी हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आरएसएस के एक सीनियर लीडर धमकी दे रहे हैं, और वो धमकी इसलिए दे रहे हैं कि उनको संविधान पर, रूल ऑफ लॉ पर यकीनन कोई भरोसा नहीं है। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर हमारी अदालत किस लिए है, पुलिस किस लिए है, आईपीसी किस लिए है, पार्लियामेंट की अजमत किस लिए है?
लेकिन ये वाली जो दलील है वसी साहब कि गाय का मांस खाना इस देश की एक जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके लिए एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है, अगर इस धार्मिक आस्था का सम्मान रखने के लिए अगर इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय गाय का मांस खाना छोड़ दे तो इसमें बुराई क्या है?
अरे कौन खा रहा है गाय? जहां पर गाय के ऊपर कानून है वो कानून है वहां पर, और कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो एक्शन लीजिए आप। हमारे मुल्क में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कानून नहीं है, कई स्टेट साउथ में है जहां पर अगर डॉक्टर सर्टिफाई करता है तो आप करिए। अच्छा, फिर ये जो बीफ का जो एक्सपोर्ट हो रहा है बंद कर दीजिए ना, 15,000 करोड़ का सिर्फ नुकसान होगा, देश बर्दाश्त कर लेगा।
एक चीज और वैसी जी, जब आप सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हैं तो आपका जो मुखर स्टैंड वो भाजपा के खिलाफ होता है, लेकिन जब बात चुनावी राजनीति की आती है और लोग जब गणित की बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ओवैसी जहां जहां कूदते हैं चुनाव लड़ने के लिए वहां वहां भाजपा को फायदा होता है।
अब देखिए, अब जो अंदर से कांग्रेसी है मैं क्या कर सकता हूं उनको? इस मुल्क को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है, हमारे पास कई मुतबादिल अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें मेरी पार्टी भी शामिल है। रहा सवाल बीजेपी की मुखालिफत करने का, तो इंशाल्लाह ताला जब तक हम जिंदा रहेंगे मुखालिफत करते रहेंगे। जहां जहां हम नहीं लड़े, कर्नाटक हमने नहीं लड़े, कैसे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई? दिल्ली हम नहीं लड़े, बीजेपी यहां पर आप जीत गई। आप जाइए उत्तर प्रदेश में, 400 में से हम 25 सीट लड़े, मैं जिम्मेदार। अरे भाई, कभी आप ये भी तो जायजा ले लीजिए कि आपने क्या गलती की है, आपकी इलेक्शन कैंपेन क्या थी, क्या आपने गलतियां नहीं की हैं? भाई आप गुजरात में राहुल गांधी कैंपेन करते हैं, 85 मरतबा गए, 27 मरतबा मंदिर गए, आपकी पार्टी ने तो उनको जनेधारू कह दिया। तो फिर हम तो जनेधारू नहीं, हम तो वर्ना सिस्टम में आते भी नहीं, तो क्या करें फिर हम?
असदुद्दीन ओवैसी से बात कर रहे थे कुलदीप मिश्र। और आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। दिलनवाज पाशा तमाम अखबार लेकर मौजूद हैं स्टूडियो में।
जी संदीप, अखबारों में रकबर खान की मौत का मामला आज भी प्रमुखता से छापा गया है। द हिंदू ने कांग्रेस के उस बयान को प्राथमिकता दी है जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से लिंचिंग की घटनाओं की जांच कराई जानी चाहिए। वहीं दैनिक भास्कर ने कहा है संघ और भाजपा के नेता बोले मुसलमान गाय से दूर रहें, लिंचिंग रुक जाएगी। इसके अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान भी अखबारों में है जिसमें उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो लिंचिंग पर कानून बनाया जाएगा।
अच्छा दिलनवाज, इस खबर के अलावा पाकिस्तान में जो आज चुनाव हो रहे हैं उसकी खबर भी है क्या अखबारों में?
जी खबर है, लेकिन उस प्रमुखता से दिल्ली के अखबारों ने नहीं छापा है। द हिंदू ने ग्राफिक्स बनाकर ये समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में कितनी सीटें हैं और वहाँ क्या स्थिति है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान की तस्वीर भी द हिंदू ने पहले पन्ने पर छापी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के दौरे पर हैं, कल वो रवांडा में थे और वहां से युगांडा पहुंचे हैं। मोदी की गाय को जो है चारा खिलाते हुए तस्वीर आज की जनसत्ता ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है और मोदी ने वहां बयान दिया है कि रवांडा में जल्द ही भारतीय उच्चायोग खुलेगा। तो ये खबर भी अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर है।
और ये गाय वहाँ रहने वाले गरीबों की दशा बेहतर बनाने के लिए उन्हें दी जाती है।
जी संदीप, रवांडा में 1994 में हुए जनसंहार के बाद एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया था जिसके तहत गरीबों को गाय सरकार देती है। 130,000 से अधिक गायें अभी तक वहाँ के लोगों को दी जा चुकी हैं उसी कार्यक्रम।
भारत ने भी उसमें अपना योगदान दिया।
जी बिल्कुल। और अब एक खबर, ये उन लोगों के लिए जो रिश्वत देते हैं, रिश्वत देना भी अब अपराध होगा। घूस देने वालों को भी जेल जाना पड़ेगा। तो सिर्फ जो घूस लेने वाले अधिकारी हैं उन्हें ही नहीं, अब जो लोग रिश्वत देते हैं और रिश्वत देकर अपने काम कराते हैं, कानूनन प्रावधान ये हो गया है कि उनको भी 7 साल तक की सजा हो सकती है। और ये खबर कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा जिक्र करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि डोकलाम में जो भारत और चीन के बीच गतिरोध बना था, उसके बाद चाइना ने भूटान से कहा है कि वो BRI के साथ जुड़े, ये उनकी खास खबर है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन 80% तक घट गया है, ये भारत के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। और ये
ऐसा दावा किया है।
जी, उन्होंने दावा किया और सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा है। ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर इसको जगह दी है। 20 जुलाई से देश भर में जो ट्रक संचालक हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। और आज का इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि इसका असर जो है घरेलू जरूरत की चीजों पर अब पड़ने लगा है,
दूध फल सब्जी।
जी बिल्कुल। और द इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि जो VVPAT जो मशीनें हैं उनकी डिलीवरी समय पर नहीं हो पाएगी और इसका असर लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है।
हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि चुनाव समय से पहले करा दिए जाएं लोकसभा के। बहरहाल, बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा समाचार पत्रों की सुर्खियां विस्तार से बताने के लिए। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लंदन, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी तो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ एक खबर ये भी आ रही है कि भारतीय ऑफ स्पिनर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद वहां के काउंटी क्लब वूस्टरशायर से खेलने का मन बना लिया है। टेस्ट सीरीज के बाद अश्विन टीम के साथ भारत नहीं लौटेंगे। वूस्टरशायर ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अश्विन को एक विदेशी खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया जा रहा है। वो काउंटी चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में 2 टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल होंगे। आपको बता दें 2017 में भी वूस्टरशायर के लिए 4 मैच अश्विन ने खेले थे। तो वहीं श्रीलंका पहुंची अंडर-19 इंडियन टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कल यानी 24 जुलाई से शुरू हुए पहले टेस्ट मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अथर्व तायडे और पवन शाह के शतकों की मदद से अंडर-19 टीम ने जबरदस्त शुरुआत की है। श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन 4 विकेट पर 428 रन बनाए। आज इस पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन है और ये मुकाबला 27 जुलाई को खत्म होगा। और अब क्रिकेट के मैदान से अगर आपको टेनिस के मैदान पर लेकर जाएं, तो वहां पर 8 बार के विंबलडन चैंपियन रहे रॉजर फेडरर ने 4 अगस्त से शुरू हो रहे रॉजर्स कप से अपना नाम वापस ले लिया है। अपने व्यस्त स्केड्यूल के कारण फेडरर कनाडा में होने वाले इस ATP टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। टूर्नामेंट से नाम वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि अब उन्हें यह तय करना है कि वे एक सीजन में कितने टूर्नामेंट खेल सकते हैं। वे इस कप के 2006 के बाद से कभी चैंपियन नहीं बन सके। पिछले साल फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से हार गए थे। हालांकि टूर्नामेंट के आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता में टेनिस के 20 श्रेष्ठ खिलाड़ियों में से 19 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले खास खास खबरें एक बार फिर सुनेंगे दिलनवाज पाशा से।
पाकिस्तान में आज 10 करोड़ से अधिक मतदाता केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। चुनाव का अभियान हिंसा से प्रभावित रहा है और सेना पर चुनावों में दखल देने के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार युद्ध से प्रभावित हो रहे किसानों की मदद के लिए अमरीकी सरकार ने $12 अरब का राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। ग्रीस में राजधानी एथेंस के पास कई कस्बों और गांवों को तबाह कर देने वाली जंगल की आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस आग की वजह से कम 74 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि लापता लोगों का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। अमेरिका के सबसे चर्चित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक कैलिफोर्निया के योसेमाइट पार्क की ओर से बीते 10 दिनों से बढ़ रही जंगल की आग की वजह से इस पार्क को बंद कर दिया गया है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया प्रशांत चहल ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार। आज होगा खास कार्यक्रम पाकिस्तान के चुनाव पर विशेष। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन bbchindi.com है आपके साथ।